हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जोया को होश आ गया था। जब उसे पता चला कि उसका बच्चा ठीक है और उसे बेटी हुई है, तो वो बहुत खुश हुई। लेकिन खुशी के साथ साथ उसे अचानक वो सब याद आ गया जो दो दिन पहले उसके साथ हुआ था। जोया बेबसी से अपने जख्मों पर हाथ लगा रही थी। इन जख्मों से उसका बहुत पुराना नाता था। उसे एक एक करके अपने साथ हुई सारी ज्यादतियाँ याद आने लगीं। जोया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ एक बार फिर ऐसा कुछ हो सकता है। वो इतनी मजबूत होने के बाद भी कैसे किसी मर्द की बातों में आ सकती है? आखिर कैसे वो किसी मर्द को अपने ऊपर हावी होने दे सकती है? जोया को लग रहा था कि जो भी उसके साथ हुआ है उसमें सिर्फ उसकी गलती है, उसमें अभी राठौर का कोई दोष नहीं है। जोया को होश आ चुका था। इसकी खबर अबीर सिंह राठौड़ को मिल चुकी थी, लेकिन वो जोया के वार्ड के दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाए और जोया का सामना करे, लेकिन उसे उसके सामने तो जाना ही था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जोया की नाराज़गी नहीं झेल सकता था। जोया के बिना जीने के बारे में उसने सोचा तक नहीं था। अबीर को रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। काश उसे इतना गुस्सा ना आया होता और ऐसा कुछ ना हुआ होता। अबीर सिंह राठौड़ यही सोच रहा था कि तभी एक डॉक्टर जो जोया का रूटीन चेकअप करने आई थी वहां आ गई। मिस्टर राठौड़, आप अभी तक यहीं हैं? शायद आपको पता नहीं है, आपकी बीवी को होश आ चुका है। आप जाइए, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने अबीर को जोया के वार्ड के बाहर खड़ा देखकर पूछा। डॉक्टर की बात सुनकर अबीर ने सिर हिलाया और वो डॉक्टर के पीछे पीछे चल पड़ा। जोया हल्का सा टेक लगाकर बैठी हुई थी। जैसे ही उसने अपने सामने डॉक्टर को देखा, वो हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन जैसे ही उसने उस डॉक्टर के पीछे अबीर सिंह राठौड़ का चेहरा देखा, जोया की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। अबीर सिंह राठौड़ ने केवल एक पल के लिए अपनी नज़रें उठाकर जोया की ओर देखा और फिर अपनी आंखें झुका लीं। जोया अबीर को ही देख रही थी। मिस्टर राठौड़, अब आप कैसा फील कर रही हैं? कहीं आपको कोई दर्द तो नहीं हो रहा है ना? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस दिल में बहुत दर्द हो रहा है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जोया ने कहा। जैसे ही जोया ने ये कहा, अबीर को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा घोल दिया हो। डॉक्टर एक अनुभवी महिला थी। वो जोया का इशारा समझ चुकी थी, क्योंकि जोया का चेहरा उसका जिस्म उसके साथ हुई दुर्घटना की कहानी बता रहा था। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, अभी आप बहुत बड़े खतरे से बाहर निकली हैं। धीरे धीरे आपके सब जख्म भर जाएंगे और सब दर्द मिट जाएगा, डॉक्टर ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया। अभी मैंने आपके कुछ मेडिसिन्स चेंज किए हैं, बस 3 दिन आपको और वो मेडिसिन्स खानी हैं, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर जोया हल्के से मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर, मैं अपनी बेटी से कब मिल सकती हूँ? जोया मैडम, जैसा कि आप जानती हैं, आपकी बेटी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, इसीलिए हमने उसे हॉस्पिटल के स्पेशल केयर वार्ड में रखा हुआ है। जैसे ही आप चलने फिरने लायक होती हैं, हम खुद आपको आपकी बेटी से मिलने ले जाएंगे, लेकिन आप उन्हें दूर से ही देख सकती हैं, जैसे आपके हस्बैंड मिस्टर अबीर सिंह राठौड़ ने देखा था, डॉक्टर ने जवाब दिया। जोया डॉक्टर की बात सुनकर जोया ने एक नज़र अबीर की ओर देखा और बोली, ठीक है डॉक्टर, मैं इंतज़ार करूंगी। ओके, आप आराम कीजिए, ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चली गईं। जोया ने अबीर को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चादर ओढ़कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। जोया के इस बर्ताव से अबीर का दिल कटने लगा था, लेकिन वो जानता था कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसके द्वारा किए गए कुकर्मों की वजह से हो रहा है। जैसे ही सिस्टर जोया के कमरे से बाहर गई, अबीर जोया के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया और उसकी ओर देखने लगा। अबीर चाहता था कि जोया उससे बात करे, उसे गालियां दे, उसे मारे, पर कुछ तो कहे, क्योंकि जोया की खामोशी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। जोया खाली आंखें बंद करके लेटी थी, नींद तो उसकी आंखों में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। जैसे ही जोया को ये एहसास हुआ कि अबीर उसके कमरे में उसके पास बैठा हुआ है, तो जोया को उसके वजूद से घुटन होने लगी। वो नहीं चाहती थी कि अबीर सिंह राठौड़ उसके आसपास भी रहे। अबीर सिंह राठौड़ को अपने पास देखकर जोया का दिल नफ़रत से भर उठा। मिस्टर राठौर, मैं नहीं चाहती कि आप इस वक्त मेरे साथ इस कमरे में रहें, सो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, जोया ने अबीर की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही जोया ने अबीर से वहाँ से जाने के लिए कहा, अबीर का दिल बुरी तरह से टूट गया। बिना जोया की परवाह किए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जोया अबीर के आंसुओं को देख चुकी थी, लेकिन जोया का दिल अब एकदम पत्थर का हो चुका था। अब किसी के भी आंसू उसका दिल नहीं पिघला सकते थे। अबीर समझ चुका था कि जोया उससे नफरत करने लगी है। अबीर वहां से उठा और जोया पर एक उचटती सी नज़र डालता हुआ वहां से निकल गया। अबीर के जाने के बाद जोया ने झट से अपनी आंखें खोल लीं। अबीर सिंह राठौर, मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करके तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जोया ने अबीर के गए रास्ते की ओर देखते हुए कहा। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक औरत अगर अपने आप पर आ जाए तो वो क्या क्या कर सकती है। बस अब बहुत हो गया, तुम लोगों का बहुत बर्बाद कर ली तुम जैसे मर्दों ने मेरी ज़िंदगी, लेकिन अब नहीं, अब जोया किसी और मर्द का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। और वैसे भी अगर मैंने अब किसी भी मर्द का जुल्म बर्दाश्त कर लिया तो मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगी। मैंने भी तो एक बेटी को जन्म दिया है, आगे चलकर वो भी बड़ी होगी, वो भी जवान होगी, और मैं नहीं चाहूंगी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा हो जो उसकी माँ के साथ हुआ है। इसीलिए मैं अपनी बेटी का रोल मॉडल बनूंगी। अब मैं अपने आप को इतना मजबूत कर लूंगी कि तुम तो क्या, तुम्हारे जैसा कोई और मर्द मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और इतना ही नहीं, अब जिस भी मर्द ने मुझे आंख उठाकर भी देखा, मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। बेटी के जन्म लेते ही जोया के अंदर एक अजीब सी हिम्मत का जन्म हो चुका था। जोया का जिस्म इस वक्त बेहद दर्द में था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी और उस जंग में उसका दिमाग जीत चुका था। वो जानती थी कि उसे अब क्या करना है। उसने अपना दिल बिल्कुल पत्थर का बना लिया था। जोया ने सोच लिया था कि अब वो दिल से कभी कोई काम नहीं करेगी, वो जो भी करेगी सिर्फ अपने दिमाग से करेगी। जोया ने सोचते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी नसों में सुई लगी हुई होने के कारण हाथों पर जोर पड़ने की वजह से वहां से खून निकलना शुरू हो गया था, लेकिन जोया को अब किसी भी तरह के खून या दर्द की कोई परवाह नहीं थी। वहीं दूसरी ओर अरहम अपनी माँ गजाला जी के पास जा खड़ा हुआ और बोला, मॉम, मैं अबीर सिंह राठौर के घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। लेकिन क्यों बेटा, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, गजाला जी ने चौंकते हुए पूछा। वहाँ पर मेरे दोस्त हैं अकरम और रिया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से वे लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाया, सो प्लीज़ आप मेरे साथ चलें ताकि मैं वहाँ जाकर अपने दोस्तों से मिल सकूँ, अरहम ने कहा।
लेकिन बेटा, वो तो पुलिस वाला है और उस दिन तो आप लोगों का झगड़ा भी हुआ था। आज तक मुझे समझ नहीं आया आखिर आप लोगों का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, गजाला जी ने कहा। गजाला जी उस वक्त अरमान के उन पर गन तानने की वजह से शॉक्ड थीं, इसलिए वे लोग किस बात पर झगड़ रहे थे वो समझ नहीं पाई थीं। मॉम, वो कुछ नहीं, मामूली सी बात थी, लेकिन अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है, अरहम ने कहा। लेकिन बेटा, अगर सब ठीक है तो वहाँ पर तो तुम अकेले भी जा सकते हो, तो मेरी क्या ज़रूरत है। मॉम, अबीर सिंह राठौर के आदमी मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। अबीर सिंह ने साफ साफ मना किया है कि मैं और मेरा भाई उसके घर के आसपास भी न फटकें। अबीर भाई ने हमें अपनाया नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैंने जाने की कोशिश नहीं की? मैं गया था वहाँ पर, लेकिन अबीर सिंह राठौर के आदमियों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे वहाँ ले जा सकें, अरहम ने शांत स्वर में कहा। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, गजाला जी ने कहा। अपनी माँ की बात सुनकर अरहम उसे हैरानी से देखने लगा, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सजी धजी उसके सामने खड़ी थी और उसके बाद भी वो कह रही थी कि मैं अभी और तैयार होकर आती हूँ। ये सोचकर वो हैरान हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे अपना काम निकलवाना था। ठीक है, आप आ जाइए, तब तक मैं गाड़ी में आपका इंतजार करता हूँ। ऐसा कहकर अरहम गजाला जी के घर से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी ओर 3 दिन हो चुके थे। ज़ोया अब अपने आप को काफी ज्यादा ठीक महसूस कर रही थी। इन 3 दिनों में अबीर सिंह राठौर उसके कमरे में नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो गया था। वो उसके कमरे के बाहर खड़ा खड़ा शीशे में से ज़ोया को देखा करता था। ज़ोया जानती थी कि अबीर उसे बाहर से देख रहा है, लेकिन उसने कभी भी अबीर को कोई इशारा या किसी भी तरह का सिग्नल नहीं दिया था। अबीर का दिल बहुत ज्यादा मायूस हो गया था।